भाई लोग भी आगे आ जाएं। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी एक बहुत सुंदर वर्कशॉप करने जा रहे हैं जो फुल ऑफ स्व परीक्षण, स्व निरीक्षण, स्व में सुधार और स्व की उन्नति, इसके लिए होगा। हम सभी मधुबन के इस पावन धरा पर भट्टी कर रहे हैं और इस भट्टी का लक्ष्य है डबल लाइट बनना। इस भट्टी का लक्ष्य है विकर्मों का विनाश करना और इसीलिए आज हमें ये जो वर्कशॉप करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिजाइन योर डेस्टिनी। डिजाइन योर डेस्टिनी। और ये जो प्रोग्राम है ये खास है, जैसे हम कहते हैं हम भट्टी करने आए हैं तो बाबा भी कहते हैं बच्चे याद करो, किस लिए याद करो, संगम युग पर पूरे कल्प में यही एक आखिरी जन्म मिला है, 63 जन्मों के विकर्मों को विनाश करने, विकर्मों का खाता सेटल करने, भस्म करने, चुकतो करने। जब तक विकर्मों का खाता चुकतो नहीं होगा तब तक आत्मा ऊपर नहीं जा सकेगी। जब तक कर्मों का हिसाब किताब क्लियर नहीं होगा तब तक बार बार जन्म लेना पड़ेगा। और इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने विकर्मों का खाता सेटल कैसे करें, चुकतू कैसे करें। और इसी उपलक्ष्य में एक साल रिसर्च करके ये प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि हम सभी के मन में एक प्रश्न आता है। बाबा भी कहते हैं योग से हम निरोगी बनते हैं, योग से आयु बढ़ती है, योग से रिश्ते सुधरते हैं, लेकिन फिर भी ब्राह्मण बच्चों की तकरार रहती है, हम इतना योग करते बाबा फिर भी बीमारी क्यों, हम इतना योग करते हैं फिर भी हमारे रिश्तों में खराबी क्यों, हम इतने सच्चे हैं फिर भी मान सम्मान में कमी क्यों, फिर भी स्कोप क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण है। हम सभी सफेद ड्रेस में यहां हैं, पीछे बहुत कुछ करके आए हैं, पिछले जन्मों में बहुतों के साथ बहुत कुछ करके आए हैं और इसलिए संगम युग का आखिरी जन्म है अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का, विकर्मों का खाता सेटल करने का। और वो कैसे सेटल कर सकते हैं इसी पर एक एक बहुत सुंदर एक एक रिश्ते को लिया है। ध्यान में रखना ब्राह्मण संगम युग पर बने हैं लेकिन विकर्म किसके साथ करके आए हैं, ब्राह्मण संगम युग पर बने हैं विकर्म किसके साथ करके आए हैं, लौकिक के साथ, है ना, लौकिक के साथ इतने सारे विकर्म करके आए हैं और अभी हम ब्राह्मण बने हैं तो उस विकर्मों का फाइल वैसे के वैसा है और उस फाइल में से वो जो उनसे जो ऊर्जा आती है, जो नेगेटिव एनर्जी आती है वो हमारे मन को अशांत करती है, वो आगे बढ़ने नहीं देती है। और इसलिए आइए 63 जन्मों में जो कुछ किया है उसे हम सेटल करने की कोशिश करें। इसमें आप सभी भाई बहनों का हमें साथ चाहिए, तो आप साथ देंगे ना, ठीक है ना, साथ अच्छी तरह से देंगे ना, वेरी गुड। तो चलिए अभी इस प्रोग्राम में क्या किया है। नॉर्मली हम देखते हैं ब्राह्मण आत्माएं भी नेचुरली किसी के जीवन में एक के बाद एक अगर परेशानियां चल रही है तो फिर किसके पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास कुंडली लेकर जाते हैं ग्रहमान के लिए, है ना। अभी इसमें बहुत सुंदर बताया आपके हर ग्रह वो भी अच्छे हो जाएंगे, बृहस्पति की दशा बहुत सुंदर हो जाएगी। सिर्फ अपने रिश्तों को ठीक कर लो, सिर्फ अपने स्वभाव संस्कार को बदल डालो। तो ये प्रोग्राम बना है एक स्वचिंतन स्वनिरीक्षण, दूसरा है उसके साथ साथ करेक्शन इन योर कर्मा अफर्मेशन, उसके साथ है विजुलाइजेशन और मेडिटेशन स्वमान। इसके साथ हम आज शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम सभी आत्माएं, कहा जाता है कर्म नेकी से कीजिए, ध्यान रहे कर्म नेकी से कीजिए, क्योंकि न दुआ खाली जाती है न बद्दुआ। तो कई भाई बहने कई लोग ये कंप्लेन करते हैं और वो कंप्लेन ये रहती है कि अरे मेरा सब अच्छा है, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, ओके मैं बहुत होशियार हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। ब्राह्मण जीवन में भी जैसा पुरुषार्थ चाहिए वो नहीं है, ब्राह्मण जीवन में भी जो योग चाहिए वो नहीं है, जो सेवा मेरे से होनी चाहिए वो नहीं होती है, बार बार कुछ कठिनाई आती है, बार बार कुछ अड़चने आती है, तो ऐसा क्यों होता है। तो आज हम उसका भी देखने जा रहे हैं। तो कई ऐसे कहते हैं कि यस मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, नौकरी में प्रॉब्लम है, कई माता पिता है उनके बच्चों के नौकरी में प्रॉब्लम है, किसको बार बार एसिडिटी होती है, किसको हड्डियों की क्या प्रॉब्लम आ जाती है, किसका बीपी लो होता है और किसको ना पिंपल्स आते हैं, किसके बार बार फ्रैक्चर होते हैं। एक बार फ्रैक्चर होना शुरू हो गया ना, उनके मन में डर बैठता है अभी वापस होगा, और सचमुच उनको डर के कारण हो जाता है वो। और मालूम है किसको तो स्व अनुभूति की कमी है, मैं आत्मा हूं बोलते जाते अनुभूति कहाँ है, लाल लाइट बंद हो गई, योग गायब, स्व अनुभूति की कमी, सेल्फ रियलाइजेशन की कमी। और ये आत्माएं कई बार बहुत टेंशन में। आज बाबा ने क्या मैसेज दिया था, कई बच्चे पुरुषार्थ कैसे कर रहे हैं, तनाव में टेंशन में बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। तो ब्राह्मण जीवन भी ना बहुत टेंशन में चल रही है, मैंने उस ब्राह्मण जीवन का जो सुख चाहिए जो आनंद चाहिए वो आनंद नहीं है ब्राह्मण जीवन का भी, न लौकिक का न अलौकिक का। कई बार तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, मैंने बाबा तो कहते अतीन्द्रिय सुख का आनंद लेना है, लेकिन ये अतीन्द्रिय सुख के बजाय आत्मा किस में जाती है, डिप्रेशन में। और इसका कारण क्या है ध्यान में रखो, हमारे जीवन में कोई भी बात यू ही नहीं घटती, हमारे जीवन में जो भी बातें हो रही है इन सबका कनेक्शन आत्मा की यात्रा के साथ है। और हम उस यात्रा को देखें, ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, जबकि संगम युग किस लिए मिला है, एक विकर्मों का विनाश करना, दो 84 जन्मों के लिए अकाउंट्स फुल करना, 84 जन्मों के लिए खाते फुल करना, है ना। संगम युग किस लिए मिला है, विकर्मों का विनाश करना, 84 जन्मों के लिए खाते फुल करना, और तीसरा परमात्मा जिसको पुकारते आए हैं उसके साथ मंगल मिलन मनाना। लेकिन हम देखते हैं कि आत्मा तो क्या है, वो एंजॉय नहीं कर रही है, चाहे ये लौकिक के लिए हो या अलौकिक के लिए हो। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण भी देखेंगे। तो इसका कारण एक है, तो हम सभी अपनी आत्मा की यात्रा को देखें, तो ये इसका मुख्य कारण है, सूर्य कमजोर है, सूर्य ग्रह कमजोर है। तो सूर्य ग्रह माना क्या, सबसे पहले लेट मी टेल यू आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर, हमने सिर्फ एक रेफरेंस लिया है, एक रेफरेंस लिया है और उसका एक कि हर एक ग्रह का रिश्ता एक रिश्ते के साथ है। आप रिश्ते को ठीक कर लो वो आपका ग्रह अच्छा हो जाएगा, सिर्फ रिश्ते को ठीक कर लो। तो सूर्य है सर्व ग्रह का राजा। सूर्य माना क्या? जीवन का प्रकाश। सूर्य माना सर्व प्रेरक, सर्व को प्रेरणा देने वाला। सूर्य माना जिसको हम कहते हैं सभी को बहुत अच्छी तरह से, सारे जगत का आत्मा, सारे जगत का आत्मा सूर्य है। ओके, सबसे मुख्य है। तो वैसे हमारे रिश्तों में भी सबसे मुख्य कौन है? हमारे रिश्तों में अगर फैमिली में देखते हैं तो सबसे, फैमिली इसमें सबसे पहला शब्द कौन सा आता है? फादर। तो सारे रिश्तों में सबसे मुख्य कौन है? पिता। पिता तो पिता के साथ हमारा रिश्ता कैसे रहा है? सबसे पहली बात, अगर उस पिता को थोड़ा सा हम बचपन में चले जाते हैं, क्योंकि ध्यान में रखना आत्मा के अंदर जो फाइल्स है ना, वो संस्कार में सारी फाइल्स बैठी हुई है सबकॉन्शियस माइंड में, जो जो बचपन में मैंने किया है या मेरे साथ हुआ है वो सारा का सारा वैसा फाइल वहां बैठा है। जब तक आप उसको क्लियर नहीं करोगे ना, तब तक आपका योग अच्छा नहीं लगेगा, पुराने संस्कार भी नहीं मिटेंगे, बीच बीच में वो पॉपअप होते जाएंगे, दुखी बनते जाएंगे। और इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले खुद का हीलिंग करो। और खुद का हीलिंग माना क्या? सूर्य माना सारी जगत का राजा, सबको प्रकाश देता है, सबको ऊर्जा देता है, लेकिन इस सूर्य को ग्रहण लगा है। और ग्रहण लगा माना क्या? सूर्य की जो किरणें हैं ना वो सारी ढक गई है। बहुत सारी आत्मा में विशेषता है लेकिन वो आगे नहीं आ रही है। तो इसका कारण क्या? तो सूर्य की किरणों पर क्या लगा है? ग्रहण लगा है, वो ढक गई है। और मालूम है इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमने अपने जीवन के सूर्य को ढक दिया। ढक दिया माना हमने अपने जीवन के रिश्तों के सूर्य को क्या किया? बचपन में चले जाओ, हमने उनको दोष दिया, हमने उनको बोला, इंसल्ट किया, अपमान किया, या फिर उनको दुख दिया, पीड़ा दी, दर्द दिया। आज रिश्ता अच्छा है लेकिन पहले का कर्म कौन सा है? पहले का कर्म कौन सा था? उनको अपशब्द बोला, इंसल्ट किया, या हो सकता है हमने उनको समय ही नहीं दिया। हम अपनी करियर बनाने में, बिजनेस में, पैसा कमाने में, जॉब में इतना बिजी हो गए कि हमने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। और इस कारण वो जो एक रहा है और उसी के कारण उनको बार बार दोष देते आए हैं। कई है ना, कई आज तक भी अपने पापा को दोष देते हैं, पापा या बाबूजी जो भी कहते हैं, बाबूजी आपने उस समय मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, आपने मेरी बजाय मेरे छोटे वाले बहन को, छोटे वाले भाई को बहुत अटेंशन दिया, इस कारण मैं आज यहां हूं। या फिर आपने ना बचपन में मुझे बहुत डांटा, बहुत गुस्सा किया, और मेरे जो छोटा वाला भाई था उसको बहुत प्यार दिया। और मालूम है ये जो सब कुछ मन में रहता है ना, तो बार बार जब हम किसी को दोष देते हैं तो महसूसता की शक्ति कम हो जाती है। जब दोष देते हैं तो उनकी कमियां हमारे अंदर आ जाती है। और इसलिए क्या होता है, दूसरों को दोष देते देते हमारे गुण ढकते जाते हैं। दूसरों को दोष देते देते उस आत्मा से हमें क्या मिलती है, कौन सी एनर्जी मिलती है? नेगेटिव एनर्जी मिलती है, है ना। मैं आपको उदाहरण सुनाती हूँ। एक सरकारी ऑफिसर बहुत हाई पोस्ट पे थे, बहुत हाई पोस्ट पे, वो कुछ भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके दो बेटे हैं, तो बेटों का ये कहना था, आज वो 50 और 55 एज के हैं लेकिन आज भी जॉब नहीं है, डिग्री होल्डर्स है, डबल डिग्री होल्डर, आज भी वो पापा से लड़ रहे हैं और बचपन से लड़ते थे। पापा आपको जब अच्छा जॉब था तो आपने ना हमारे नाम से प्रॉपर्टी नहीं ली, आप और उन्होंने कितना कुछ किया, आपने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। पापा को दोनों भाई मिलकर इतना डांटते, इंसल्ट करते। इस एज में पापा की उम्र 75 है और इसका रिजल्ट दोनों बच्चे अच्छे पढ़े लिखे आज भी जॉब के लिए तरस रहे हैं, नौकरी में प्रॉब्लम। कनेक्शन देखो, कनेक्शन को चेक करो। और एक है, और एक माता है वो ज्ञान में चलती है, उसकी उम्र 58 इयर्स ओल्ड है। वो माता आज 58 इयर्स ओल्ड में भी उसको प्रॉब्लम है डाइजेशन की, और प्रॉब्लम क्यों है वो आज भी याद करती है, बचपन में ना मुझे मेरे पापा से प्यार चाहिए था, लेकिन पापा ने, मैं बेटी हूं इसलिए मुझे बहुत डांटते थे, घर में ही रखते थे, और मेरा जो भाई था ना उसको फुल स्कोप देते थे कि बेटा तू सब कुछ कर सकता है, ये बेटी है ना ये कुछ नहीं कर सकती, इसको तो बस क्या करना है घर से बाहर अभी निकालना है, फटाफट इसकी रवानी करनी दूसरे घर में। तो वो जो पापा ने डांटा वो आज भी उसके मन में बैठा है। पापा आज अच्छे बात कर रहे हैं लेकिन उसके मन में, दिमाग में क्या बैठा, पापा ने मुझे डांटा, पापा ने मेरे साथ ये किया, और वो बात उसके दिमाग में ऐसे फिट बैठी कि उसकी शादी होने के बाद भी उसका डाइजेशन प्रॉब्लम शुरू है। आज 58 इयर्स ओल्ड है तो भी उसका डाइजेशन का, पाचन की प्रणाली उसकी ठीक नहीं है। और कारण उसका कनेक्शन कहाँ है, वो किसको याद कर रही है, अपने पापा की डांट को आज याद कर रही है, भले आज पापा बहुत अच्छे हैं। तो हमें करना क्या चाहिए, क्या हम ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, यस और नो? ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ना है, ऊंची स्थिति बनानी है, ऊंचा पुरुषार्थ करना है, तो फिर क्या करना होगा, क्या करना होगा बोलो? ये कैसे कर्मिक अकाउंट हम सेटल करेंगे, बोलिए, ये कर्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले महसूस करना होगा, और वो महसूस था कौन से, क्या सचमुच मेरे हाथ से ऐसा कुछ हुआ है, लगता है आपके हाथ से ऐसा हुआ है? हम सब दूध के धूले जैसे तो नहीं है, वापिस कह रहे हो, बहुत कुछ करके आए हैं और अभी ब्राह्मण बन के बैठे हैं, पहले की फाइल पेंडिंग है, कर्मों का हिसाब किताब बाकी है, तो फिर क्या करें? कर्मों का हिसाब सेटल करना है, सेटल करना है, तो चलो थोड़ा सा इसका हिसाब, मालूम है कैसे सेटल होता है, भगवान ने भी बताया, बाबा भी कहते बच्चे अपने कर्मों का हिसाब आप बहुत अच्छी तरह से सेटल कर सकते हो, तो चलो ना पास्ट में चलते हैं। पास्ट में चलकर हम अपने उस बचपन को देखते हैं, ओके? और बचपन में देखकर थोड़ा सा याद करो, एक इस गीत को सुनते हैं, आंखें बंद कीजिए और याद कीजिए पापा ने आपके लिए क्या क्या किया।
मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोल न चल न सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोल न चल न सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया बन तब से शीतल छाया, कभी सहलाया गोदी में कभी कंधों पे बिठाया, मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया, ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया।
जिस पिता ने इस दुनिया में लाया उस पिता के साथ तुमने कौन सा व्यवहार किया, अपशब्द बोले, अपमान किया, अपने ऐसे शब्द बोले
जिनसे उनकी आंखों से आंसू टपक गए, उनका चेहरा ही बदल गया। देखो अपने उस बचपन को, देखो उस बचपन को और याद करो।
किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोल न चल न सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बन तब से शीतल छाया, कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया, मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठा कर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है, कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है, मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोल न चल न सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप की आंखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा, माँ बाप का दिल जो दुखा दे मैं ऐसा कुछ न करूंगा। माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोल न चल न सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें।
अभी क्या करना है बोलिए, अकाउंट सेटल करना है तो खड़े हो जाइए और अकाउंट सेटल करते हैं। ये अकाउंट सेटल करने के लिए बहुत सच्चाई से चलो। सबसे पहले तो आज मैं जहां भी हूं, जिसके जिस स्थान पर हूं, मेरे जीवन के लिए मैं जिम्मेवार हूं, पहले ये बोलना है। मेरे जीवन के लिए मैं जिम्मेवार हूं, मेरे जीवन के लिए मैं जिम्मेवार हूं। मेरे जीवन के लिए मैं जिम्मेवार हूं। आज से हम किसी को भी दोष नहीं देंगे और आज से हाथ जोड़कर सबसे पहले तो हम बहुत हृदय के साथ, सच्चे दिल के साथ, अंतकरण से इस जन्म के पिताजी, इनको हाथ जोड़कर दिल से क्षमा मांगेंगे। ध्यान में रखना, जब क्षमा मांगते हैं ना, बोझ से मुक्त हो जाते हैं, बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और इसलिए दिल से पहले तो इस जन्म के साथ साथ 63 जन्मों में जो भी आत्माएं मेरी पिता बनी हैं, इन सब के साथ मेरे हाथ से कुछ गलत हुआ है, मेरे हाथ से अपमान हुआ है, दुख मिला है, तो मैं हृदय से कहता हूं, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। बोलिए, जोर से बोलिए, इस जन्म में जो आपके पिताजी, उन्हें याद कर, उन्हें सामने लाकर महसूस कीजिए। आप उनके सामने हैं, उनके पैर पकड़कर अश्रुपूर्ण नैनों से आप कह रहे हो, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कीजिए। और वो दृश्य देखो, आपके आंखों से जो आंसू बह रहे हैं, भले बहने दो, जैसे ये पश्चाताप के आंसू है, बहने दो इन्हें, बोझ हल्का हो जाएगा। और वो दृश्य देखो, आपके पापा जी आपको, आपके दोनों कंधों को पकड़कर ऊपर उठा रहे हैं और गले लगा रहे हैं और कह रहे हैं, बेटा कोई बात नहीं, आप तो मेरे लाडले बच्चे हो। और महसूस कीजिए वो हल्कापन, और मन ही मन याद कीजिए, 63 जन्मों में भी जो भी मुझे पिता के रूप में मिले, पितृतुल्य रिश्ते मिले, अगर मेरे हाथ से इन जन्मों की यात्रा में भी उनके प्रति कुछ भी गलत हुआ है, पीड़ा, दर्द, दुख, अपमान, जो भी मेरे हाथ से हुआ होगा, मैं उन सब आत्माओं से क्षमा मांगता हूँ। बोलिए जोर से, जब तक आप बोलोगे नहीं, बोझ से हल्के नहीं होंगे। और आइए इसी के साथ साथ, इस क्षमा के बाद आज हम एक बहुत सुंदर संकल्प लेंगे, और वो संकल्प वापस होगा, अभी हम आज से क्या करेंगे, हम सभी के अंदर एक सूर्य है, उस सूर्य को रोशन करेंगे, उस सूर्य की किरणों को चारों ओर फैलाएंगे, और आज से हम किसी भी रिश्ते को दोष नहीं देंगे, बस स्वयं के अंदर के सूर्य को जागृत करेंगे। पिताजी को वचन दीजिए, आज से हम आपको दोष नहीं देंगे, लेकिन हमारे अंदर के सूर्य को, उसके प्रकाश को चारों ओर फैलाएंगे, गुणों के प्रकाश को। और वो पिता लौकिक पिता भी है, पारलौकिक पिता भी है। आइए वो सुंदर अभ्यास करते हैं हम। और अभी चलिए एक बहुत सुंदर अभ्यास के साथ। हम सभी के अंदर एक सुंदर सा सूर्य है, आत्मा रूपी सूर्य। बस खुद को रियलाइज करते जाओ। और खुद को रियलाइज करना, मैं, मेरे अंदर जो ये सूर्य है, आत्मा रूपी सूर्य, मुझे बस वो स्वमान लेना है, जो बाबा हमें बार बार कहते, बच्चे याद करो आप कौन हो, आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, मास्टर ज्ञान सूर्य। और उस सूर्य से क्या फैलती है? सुख की किरणें, शांति की किरणें। तो आइए हम उस सूर्य का बहुत सुंदर उस स्वमान की प्रैक्टिस करते हैं। और वो बहुत पावरफुल प्रैक्टिस, और वो कौन सी है? मैं एक साक्षात सूर्यवंशी घराने की आत्मा हूं, मैं इतना तेजोमय सूर्य हूं, 10 सूर्यों से भी पावरफुल ये आत्मा है। तो चलिए हम उसकी बहुत सुंदर प्रैक्टिस करते और उस स्वमान में हम सभी बैठते हैं। बहुत अच्छी तरह से बैठे और इस सुंदर स्वमान के प्रैक्टिस देखे अपने भ्रुकुटी में एक सूक्ष्म सूर्य, बहुत पावरफुल। और स्वमान देते जाओ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। सारे गुणों का प्रकाश मुझ में है, सारे शक्तियों का प्रकाश मुझ में है। आज से मैं आत्मा अपने गुणों का प्रकाश फैला रही हूं सारे संसार में। देखे इस दृश्य को, एकाग्र चित्त होकर अभ्यास करें, सारे गुणों का प्रकाश मैं आत्मा फैला रही हूं। ये गुणों का प्रकाश सबसे पहले मेरे शरीर में फैल रहा है, शरीर की सारी बीमारियां नष्ट हो रही है, सारी बीमारियां नष्ट हो रही है। देखे इस दृश्य को, सारा शरीर ऊर्जावान तेज पुंज बन गया। मुझ ज्ञान सूर्य से शक्तियों का प्रकाश फैल रहा है। मेरे शरीर के चारों ओर एक बहुत सुंदर सुनहरे रंग का आभा मंडल तैयार हो गया। ये आभा मंडल सारे संसार में फैल रहा है। मैं सूर्यवंशी घराने की आत्मा हूं। मेरे दैवी संस्कार, शक्तियां और गुणों का प्रकाश फैल रहा है। ओम शांति। किया अभ्यास, इसी अभ्यास में रोज स्थित हो जाना है, सूर्य ग्रह पावरफुल हो जाएगा, शक्तियों का प्रकाश और आप फैलता जाएगा। आइए हम दूसरी ओर बढ़ते हैं, और वो है मन। इस दुनिया के कोई भी समस्या हमारे मन के शक्ति से पावरफुल नहीं है। सबसे पावरफुल है हमारा मन, लेकिन कई बार हमारा मन कैसे रहता है? चिंतित, टेंशन, भयभीत, बार बार डर लगता है कुछ हो जाएगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ करेगा, गलतफहमी। मन की स्थिति कैसे है? क्वेश्चन मार्क है। और इसलिए हम देखते हैं मनोबल डाउन हो जाता है। भट्टी में बल भरने आए हैं, जैसे नीचे उतरते हैं, प्लेटफॉर्म पे जाते हैं ट्रेन पकड़ने, वहां कुछ हो जाता है, पूरी शक्ति, पूरा आनंद गायब। क्या होता है? बार बार डाउट्स, जिनका मन कमजोर है ना, मन बड़ा कमजोर है, कमजोर विचार आते हैं उनको बार बार, अपने प्रति भी कमजोर विचार, वीक थॉट्स, संशय की वृत्ति। ये काम मेरे बारे में बहन जी को नहीं कुछ गलत बता दे, दूसरे को गलत नहीं बता दे। और फिर यह आत्मा हमेशा कंफ्यूज रहती है, क्या करे? मन में कभी भी उनके मन में वो ये नहीं है, स्ट्रांग डिसीजन नहीं है, या हमेशा शॉर्ट टर्म डिसीजन लेते, क्योंकि डरा हुआ मन है ना, फटाफट डिसीजन लेंगे और वो डिसीजन उनके गलत साबित होंगे। इन द मोमेंट ऑफ डिसीजन, दैट मोमेंट डिसाइड्स योर डेस्टिनी। आप जो डिसीजन लेते हो वही आपका भाग्य निश्चित करता है। और जिसका मन डरा हुआ रहता है, संशयी रहता है, गलत सोचता है, उनके डिसीजन भी कैसे होंगे? गलत डिसीजन होंगे, फट से कुछ भी गलत कर देंगे और उसका परिणाम जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। है ब्राह्मण आत्मा, लेकिन गड़बड़ी कहां हुई? डिसीजन में। और इसका कारण क्या है? हाईली इमोशनल है, अप डाउन बार बार होते हैं। अभी अभी देखो हाई है, अभी अभी एक अच्छी क्लास हुई, वाह क्या क्लास था, बढ़िया था, मस्त था। अभी अभी नीचे उतरे, किसी ने कुछ बोल दिया, आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो, कभी कुछ काम ठीक से नहीं करते हो, सारा मूड खलास, तुरंत उनका मूड खलास हो गया। और ऐसी आत्मा जो है ना, वो बार बार क्या रहती है? डिसीजंस गलत लेती है। और इसका परिणाम क्या होता है? जिसका मन अशांत है उसको ENT प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होते हैं। ENT, ईयर नोज थ्रोट, अस्थमा, सर्दी, खांसी, जुकाम। ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों में रोना आता है, इन्हें अकेलापन बहुत महसूस होता है। रहते संगठन में फिर भी अकेलापन महसूस होता है, ऐसे लगता है कोई मेरा नहीं है। और कभी कभी मालूम है इनको सुसाइड के थॉट्स आते हैं। जिनके विचारों में स्पष्टता नहीं है, उनके पास धन भी, धन संचय में कमी आती है, धन उनको टिकता ही नहीं है। ये सारे प्रॉब्लम किसके? जिसका चंद्रमा कमजोर है, जिनका चंद्र ग्रह बहुत कमजोर है। ओके, और इसका कारण क्या है, इसका कारण भी हम देखते हैं, इनका मनोबल बहुत डाउन है और इसलिए बाबा देखो बार बार कहते हैं बच्चे परिस्थिति के बजाय स्वस्थिति को शक्तिशाली बनाओ, मजबूत बनाओ। जितनी तुम्हारी स्वस्थिति शक्तिशाली होगी परिस्थिति अपने आप बदल जाएंगे। और जिनका ये चंद्र बहुत मजबूत है, पावरफुल है, तो ये चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा माना कौन से रिश्ते के साथ कनेक्शन है, मां का स्थान है। ये जैसे हमारे जीवन में पिता का इंपॉर्टेंस है, जिसने पिता के साथ का रिश्ता अच्छा कर लिया, एक मैस्कुलिन रिश्ता अच्छा कर लिया, तो जितने मैस्कुलिन रिश्ते होंगे वो सब ठीक होंगे, ध्यान में रखना। जो पिता के रिश्ते के साथ स्ट्रगल कर रहा है आज तक भी, उसका बॉस, भाई, बच्चा, फ्रेंड, इन सबके साथ उसके रिश्ते बिगड़ेंगे। और जिसने पिता के रिश्ते को ठीक कर लिया, फिर लौकिक पिता हो या पारलौकिक पिता हो, उनके साथ उसने रिश्ता ठीक कर लिया, उसके जितने मैस्कुलिन रिश्ते वो ठीक हो जाएंगे। ये इसकी बहुत खूबसूरती है। वैसे ही दूसरा रिश्ता है मां के साथ। अभी ये देखो, जिनका ये मन बड़ा शांत रहता है, कुछ भी हो जाए, किसी ने अभी भी आपको कुछ कार्य, आपको यह अच्छा करना है, फिर कहा नहीं नहीं आपको नहीं करना, हमने दूसरे को दे दी, वो नाराज नहीं होंगे, वो कहेंगे इट्स ओके, जिनका मन शांत है। तो जिनका मन शांत है उनका मनोबल कैसे होगा, स्ट्रांग होगा, मन उनका बहुत चंगा होगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। अभी देखो, जिनका मन बड़ा अच्छा है, शक्तिशाली है, तो उनको क्या होगा, उनका रक्त, उनका ब्लड का वो भी बहुत अच्छा होगा। जिनका ये स्ट्रांग होगा चंद्रमा, वो आत्माएं दिखने में भी वो सुंदर होंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे, हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहेंगे। जिनका मन अच्छा है, कल क्लास में सुना ना सचिन भाई ने क्या कहा था, एक भाई रोज कुछ ना कुछ नई नई आइडियाज लाता था, लेकिन जैसे उसके मन ने क्या किया, जैसे वो वीडियोस देखना शुरू कर दिया, उसकी मन की सारी क्रिएटिविटी खत्म हो गई, वो दूसरे वर्ल्ड में चला गया। तो अब यहां देखो, जिसका मन बड़ा शांत है, सकारात्मक है, वो क्रिएटिव है, और वो सिद्धांतों को, श्रीमत पर बहुत चलेंगे, सिद्धांतों को महत्व देंगे, ये इमोशनल होंगे, लेकिन इस आत्मा को ना धन संचय करने में कभी कमी नहीं आएंगे, क्योंकि श्रीमत पर हमेशा ये आत्मा चलती रहेंगी, प्रिंसिपल के बड़े पक्के होंगे, इन पर आप भरोसा रख सकते हो, ये आत्मा बड़ी ऑनेस्ट होगी, और ये आत्मा धन संचय में कभी कमी नहीं होगी। तो अभी सोचो हमारा मन कैसा है और इसका कनेक्शन किसके साथ है, कौन से रिश्ते के साथ है। इसका कनेक्शन है माँ इस रिश्ते के साथ। जिनका बचपन से माँ के साथ का रिश्ता, माँ या मातृतुल्य आत्माओं के साथ रिश्ता ठीक नहीं रहा है, उस रिश्ते में गड़बड़ी की है, फिर वो माँ होगी, मदर इन लॉ होगी, दीदी होंगे सेंटर के, जो भी होंगे, अगर उनके साथ रिश्ते में गड़बड़ी रही है, अच्छा नहीं रहा है, तो इन आत्माओं को बार बार क्या लगेगा, डर लगेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगे। तो अभी सोचो क्या करना चाहिए, अभी क्या करना चाहिए, इस रिश्ते को। कई देखो कहते मम्मी को कहते माँ तू सुधरती क्यों नहीं है, उसकी माँ देख कितनी अच्छी है, तुम सुधरते क्यों नहीं, ये दीदी लोग सुधरते क्यों नहीं है ये बहन जी सुधरते क्यों नहीं है, बार बार ऐसे बोलेंगे, है ना। और फिर क्या कहेंगे, क्या करे मेरी माँ ही ऐसी है ना, इस कारण सब ऐसा हो रहा है, गड़बड़ यहाँ है, क्या है हमारे सेंटर के दीदी लोग ऐसे है ना, इसलिए ऐसा सब हो रहा है। तो मना वापिस वो क्या कर रहे हैं, किसको दोष दे रहे हैं, वो दोष दूसरों को दे रहे हैं। ध्यान में रखो, जो दूसरों को दोष देते हैं वो दोष किस में आ जाते हैं, खुद में आ जाते हैं। अभी हमें क्या करना है, क्या मन को स्ट्रांग बनाना है, मन को शक्तिशाली बनाना है, सुमन बनाना है, शांत करना है। क्योंकि ध्यान में रखो, जो मन बड़ा सकारात्मक होगा ना वो आपको सब कुछ लाके देगा, और जो मन सकारात्मक नहीं होगा ना वो क्या करेगा, सब कुछ आया हुआ भगा देगा। आपको एक उदाहरण देती हूं, एक बेटा है 35 years old, वो बार बार अपनी माँ से हमेशा लड़ाई झगड़ा करता है, और इतना लड़ाई झगड़ा करता है, इतना करता है, माँ को वो बद्दुआ देता है, शाप देता है, मम्मी आपका ऐसा होगा, मम्मी आपका वैसा होगा, वैसा होगा, और मालूम है उसका रिजल्ट क्या हुआ? ऐसे माँ को बोलते 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 आज उस बेटे को ही बीपी हो गया, आज उसको ही ब्रेन की प्रॉब्लम हो गई है, आज उसको ही उसके लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई। ध्यान में रखना, गुस्सा करने के बाद भी फिकर करने वाली सिर्फ माँ होती है। कितना भी आप झगड़ा करो, कुछ भी करो, तो भी आपके बारे में शुभ सोचने वाली सिर्फ आपकी माँ होती है। और उस माँ के साथ मेरा व्यवहार कैसे रहा? फिर वो माँ इस ब्राह्मण जीवन में आपने जिसको समझा, सेंटर की दीदी को समझा, उसके साथ भी आपका व्यवहार कैसे रहा? कैसे कैसे बोला उनके प्रति? लौकिक माँ को आपने कैसे कैसे बोला है? और वो जो बोला है वो सारे कर्म क्या है? आखिर वो सारे कर्म तो है ना, विकर्म तो है ना, बहुत कुछ करके आए हैं। उन कर्मों को सेटल कैसे करोगे? उन कर्मों को हमें सेटल करना है। और इसलिए कई बार हम देखते हैं, हम योग में बैठते हैं, थोड़ी देर मन शांत होता है, वापिस अशांत होता है, वापिस शांत, वापिस अशांत। कहां न कहां से क्या आ रहे? उनकी थॉट की एनर्जी तो हमारे पास पहुंच रही है ना। और इसलिए तो बाबा कहते हैं, विकर्मों के खातों को सेटल करो, भस्म करो, विनाश करो, विनाश करो। बाबा हमें रोज रोज कह रहे हैं। और इसलिए अभी हमें क्या करना है, इसकी रेमेडीज क्या है? रेमेडीज क्या है? इसकी रेमेडीज बहुत सुंदर है। कई बच्चे अपनी माँ को भी दोष देते हैं, मम्मी आपने ध्यान नहीं दिया इसलिए मैं वो करियर नहीं कर पाई, नहीं तो आज मैं डॉक्टर होती, मेरे माँ ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, नहीं तो आज मैं क्या बहुत बड़ा कोई ऑफिसर बन जाता, मेरी माँ ने ध्यान ही नहीं दिया है। हमारे दीदी लोग हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते इसलिए आज हम ऐसे हैं। कई लोग दोष देते हैं। एक बात ध्यान से सुनना, हर एक आत्मा की जीवन की यात्रा अलग अलग है। पिछले जन्मों में औरों के साथ बहुत कुछ करके आए हैं और वो हिसाब किताब हमने मिटाया नहीं है, इसलिए जिनके साथ करके आए हैं वो आत्मा अपना चोला बदलकर, रूप बदलकर हमारे सामने आए हैं अलग अलग रिश्तों के रूप में। और वो एक एक आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने के लिए हमारे सामने है। तो अभी हमारे सामने दो ही ऑप्शन है, एक या तो दोष देते जाओ और विकर्मों को बढ़ाओ, या दूसरा मेरे जीवन में जो हुआ है उसकी जिम्मेवारी आज से मैं खुद लेती हूं। क्या करना है बोलो? मेरे जीवन में जो कुछ हुआ है, देखो जो भी आपको मिला, जो सेंटर मिलता है वो आपकी तकदीर है। इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा है बच्चे, जो आपको दीदी लोग मिलते वो आपकी तकदीर से, आपके भाग्य से। जो ब्राह्मण आत्माएं मिलती है ना, भाई बहन भी मिलते वो ऐसे नहीं मिलते, वो भी ये सारे जो ब्राह्मण आए हैं ना, ये पहले लौकिक थे पिछले जन्मों में, उनके साथ बहुत कुछ करके आए हैं। तभी एक एक कोई भाई बहन के बैठा है, कोई बहन बन के बैठी है ना, कोई टीचर बन के बैठे है, कोई लौकिक माँ के रूप में, कोई सास बहू के रूप में है। तो अभी आज से क्या करना है, 40 दिन तक एक काम करना है, 40 दिन तक। आज डेट क्या है? 40 दिन के बाद क्या डेट होगी? 10 जून, पक्का 10 जून तक मुझे आज से 10 जून तक दो चीजें नहीं करनी है। एक, किसी को भी दोष नहीं देना है, कंप्लेन नहीं करनी है। ये व्रत ले सकते हैं? ये व्रत ले सकते हैं? सभी नहीं बोल रहे? कौन कौन ले सकते? हाथ खड़ा करो। क्या बोला? कौन सा व्रत? किसी को भी दोष नहीं देंगे। दूसरा, किसी की भी निंदा, दोष देना माना निंदा करना। हाँ, एक बात ध्यान में रखना, आप जिसकी निंदा करते हो, आपके शुभ कर्म भस्म होते हैं, उनके अशुभ कर्म नष्ट होते हैं। ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो, आप जब भी किसको दोष देते हो, किसकी निंदा करते हो, तो आपके शुभ कर्म भस्म होते हैं, उनके शुभ कर्म, उनके अशुभ कर्म नष्ट होते हैं। तो अच्छा है ना, आप उनके भी कर्म विनाश कराने मदद कर रहे हो दोष देके, अच्छा है ना। ठीक है, तो आज से 40 दिन तक किसी को भी दोष नहीं देना। तो चलो आज हम इस रिश्ते को भी बहुत सुंदर करते हैं, और जिसने माँ का रिश्ता सुधार लिया ना, उसकी सारी फेमिनिन जो रिश्ते होंगे ना, सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। बहन का रिश्ता, बहू का रिश्ता, बेटी का रिश्ता, फ्रेंड का रिश्ता, ननन का रिश्ता, सारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे। सिर्फ एक रिश्ते को ठीक कर लो, नारी का वो एक रिश्ता। कौन सा सबसे पावरफुल रिश्ता? माँ का रिश्ता। तो आइए माँ के इस रिश्ते को हम बहुत अच्छा बनाते हैं, और इसलिए खड़े हो जाते हैं। खड़े होंगे? यस। बहुत ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ उस रिश्ते को देखो, मन ही मन में, जिसने इस जन्म में आपको इस दुनिया में लाया। नौ मास तक उसने अपने पेट में आपको पाला, आपके लिए उसने हर चीज का त्याग किया। वो थी आपकी मां, हर समय आपका ध्यान रखा, आपके लिए उसने अपनी जीवन कुर्बान कर दी। वो थी आपकी मां, आपके लिए रात का दिन किया, आपके लिए उसने खाना नहीं खाया, और वो पूछती थी, बेटा आपने खाना खाया, फिर मैं खाऊंगी। वो थी आपकी माँ। वो नंगे पैर चली क्योंकि उसको आपको जूते देने थे, उसने पूरे साल कपड़े नहीं खरीदे क्योंकि उसको आपको नई ड्रेस देनी थी। उसने पापा की डांट से बचाया, वो थी आपकी माँ। और स्कूल से आने के बाद आपके चेहरे पर वो जब उदासी देखती थी ना, तो वो पूछती थी, बेटा स्कूल में कुछ हुआ क्या? वो थी आपकी माँ। आपके टिफिन से एक रोटी घर आ गई, कहेंगे मेरा बेटा भूखा रह गया, और आपकी आवाज फोन से सुनने के बाद वो कहती थी, बेटा तबीयत ठीक है ना? आपकी आवाज लो क्यों है, इतनी कम क्यों बेटा? वो थी आपकी माँ। कोई उसके पास आपकी शिकायत ले जाता था ना, तो कहती थी, नहीं नहीं मेरा राजा बेटा है, वैसा नहीं है, आपकी गलत फहमी है। वो थी आपकी माँ। खुद धूप में चलती रही, खुद बारिश में भीगती रही, लेकिन अपने पल्लों से आपके सिर को ढकती रही। वो थी आपकी माँ। मालूम है आपको जो पुकार आया, तो रात भर आपके सिर के वहां बैठी रहती थी, और कभी कभी बस सारी रात दरवाजा खोलकर वो देखती रहती थी आपकी तरफ, ठीक से सोया है क्या मेरा बलाल? वो थी आपकी माँ। और आपने उसके साथ क्या व्यवहार किया? आपने उसका अपमान किया? आप उससे बात नहीं करते हो? आपने उसको सम्मान नहीं दिया? पूछा भी नहीं, माँ अब कैसी हो? माँ आपने ठीक से खाना खाया? पूछा भी नहीं। वो आपके आने का इंतजार करती थी और आप हमेशा कहते थे मैं बिजी हूं, मैं बिजी हूं, और वो बस इंतजार ही करती रही। वो थी आपकी माँ जिसने सारी जीवन आप पर कुर्बान कर दी, अपना विश्व आपको बना लिया, जो सदा आपके भले के लिए सोचती रही, और उसको आपने दुखाया, उसको गलत बोला, उस पर गुस्सा किया, उसको पीड़ा दी, उसकी तरफ देखा भी नहीं। क्या किया तुमने? क्या किया? सोचो, ऐसे 63 जन्मों से इस रिश्ते के साथ कितनी गलतियां की है, कितनी गलतियां की है। क्या इस गलती को सुधारना है? क्या इस गलती को सुधारना है? जो भी मातृतुल्य ऐसे रिश्ते हैं, क्या इसको सुधारना है? बोलो, सुधारना है। चलो मन मन इस जन्म के उस रिश्ते को सामने देखो और उस बोझ से मुक्त होने के लिए एक ही उपाय है, क्षमा मांगना और शुक्रिया करना। क्षमा मांगना, शुक्रिया करना। क्षमा से मन हल्का हो जाता है, क्षमा से मन शांत होता है, क्षमा से बोझ से मुक्ति मिल जाती है, क्षमा से विकर्मों से दूर हो जाते हैं। मन ही मन उस रिश्ते को देखो। माँ लौकिक और अलौकिक, और पैर छो मन ही मन, नीचे बैठकर दोनों हाथों से पैर छो और महसूसता के साथ बोलो, माँ मुझे क्षमा करो। माँ आपको बोलना है, बोलना है, जोर से बोलना है। आपकी आंखों में आंसू आए, आंसू आने दो, इसी से मन हल्का होगा। माँ मुझे क्षमा करो, माँ मुझे क्षमा करो, मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। बोलो बोलो, जोर से बोलो, माँ मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। त्रिशूष जन्मों में भी जितनी आत्माओं ने मेरी इस जीवन की यात्रा में माँ का रिश्ता निभाया है, मैं उन सब आत्माओं से हाथ जोड़कर विनम्रता से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। और वो दृश्य देखो, माँ दोनों हाथों से आपको ऊपर उठा रही है और गले लगा रही है और कह रही है, नहीं बेटा, आप तो मेरे सपूत बच्चे हो, बाबा का नाम रोशन करने वाले हो। बाबा का नाम रोशन करने वाले हो। मैं आज से आपको वचन देता हूं, मैं चंद्र बनूंगा। मना शांत रहूंगा, मैं शुभ सोचूंगा, हाथों को नीचे कर लो, आंखों को पोंछ लो और चले एक स्वमान की प्रैक्टिस करते हैं। कैसे लग रहा है? कैसे लग रहा है बोलो? हल्का लग रहा है? आत्मा से बोझ हल्का हुआ? यस। माँ का शुक्रिया भी अदा करते हैं हम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पालना का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हमारा कर्मिक अकाउंट क्लियर कब होता है? क्षमा मांगते हैं, क्षमा करते हैं और शुक्रिया करते हैं। और आज से और एक बात करेंगे, और वो कौन सी? एक सुंदर स्वमान की प्रैक्टिस। और वो स्वमान कौन सा? मैं शांत हूं। ये हम बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने वाले। आर यू रेडी फॉर दैट? रेडी? ब्रेक हो चुका है लेकिन स्वमान की प्रैक्टिस करें। चलो स्वमान की प्रैक्टिस करते हैं। और वो बहुत सुंदर, मैं शांत हूं। और वो शांति की लहरें सारे विश्व में फैलने दो, इतनी वो लहरें फैलने दो जैसे शांति का एक चंद्र अंदर में उदित हो चुका है। शीतलता का चंद्र सबके मन को शीतल कर रहा है, शांत कर रहा है। चले भाई जी, ओम की धुनी हल्के से लगा सकते हैं आप, धीरे से ओम की धुनी, बहुत लो वॉल्यूम, ओके? और हम सभी अभ्यास करते हैं। और देखिए यहां पर वो बार बार अपनी आत्मा की ओर चले जाओ और अपनी शक्ति को बढ़ाओ, शक्ति को बढ़ाओ सिर्फ एक स्वमान से, मैं शांत हूं। मैं शांत हूं। हर एक वाक्य के साथ साथ शांति का औरा, शांति के प्रकंपन जैसे और ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये दृश्य देखना, मैं शांत हूं। बोलिए सभी, ये औरा पूरे आपके शरीर में फैल गया है। मैं शांत हूं। शांति का औरा और बड़ा हो गया, शरीर के चारों ओर फैल गया देवताओं की तरह। मैं शांत हूं। ये औरा
पूरे संसार में फैल रहा है। इसी स्थिति में एक मिनट तक स्थिर रहे।
बाबा ने हम सभी को 16 कलाओं के बारे में बताया और उसमें से एक कला है संवाद की कला, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल माना बोलना भी और सुनना भी, समझना भी। We have to read between the lines and behind the lines. कई कई लोग express नहीं कर पाते हैं, हमें उन्हें समझना होता है वो क्या कहना चाहते हैं, और कई बार ना किसको समझाना होता है क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं। और इसी के लिए एक बहुत अच्छी कला जो है और वो है कम्युनिकेशन स्किल, बोलने की कला, संवाद साधने की कला। और इसी शब्द, इसको कहते शब्द, शब्द को कोई स्पर्श नहीं कर सकता लेकिन शब्द सभी के दिल को स्पर्श कर जाते हैं। जिन शब्दों को धार होती है उससे दुश्मन बनते हैं, और जिन शब्दों में आधार होता है उससे दोस्त बन जाते हैं। और विशेष इन शब्दों की जो अमीरी चाहिए, शब्दों की श्रीमंती चाहिए, शब्दों की समृद्धि चाहिए, वो स्पेशली किसके लिए? जो हमारा पूरा मास का अव्यक्त इशारा चल रहा है, कौन सा? नम्रता मधुरता, नम्रता मधुरता। 30 दिन से बाबा एक ही बात को बोल रहे हैं, नम्रता मधुरता मधुरता। आज रिश्तों में हम देखते हैं रिश्तों में खटास क्यों है, स्पेशली आजकल अगर प्रॉब्लम देखेंगे ना लौकिक में, सास बहू का, ननंद भाभी का, बुआ भांजी का, रिश्तों में खटास क्यों? बहन बहन का ये खटास है, ये खटास क्यों? बहन भाई आपस में बात नहीं कर रहे। कई बार हम देखते हैं लौकिक में क्या, अलौकिक में भी है, अलौकिक में भी कई बार हम देखते हैं बहने बहने बात नहीं करती है, स्टूडेंट्स आपस में कई बार बात नहीं करते हैं, है ना? ये क्या है? शब्दों की कमी है, प्यार की कमी है, समझने की कमी है। और इसलिए जैसे कहते हैं ना कि इसमें बहुत सुंदर बताया है, बुध ग्रह, बुध ग्रह माना क्या? बुद्धि का ग्रह। बुद्धि माना क्या? बुद्धि माना पहले समझो, हर एक आत्मा जो मेरी जीवन में आई है क्यों आई है इस बात को समझो। हर आत्मा मेरे सामने आई है, मेरे साथ आई है, इसका कारण है मेरे बचे हुए कर्मों की कहानी पूरी करने के लिए आई है। और अगर उस कहानी को हम पूरा होने नहीं देंगे, हम उसको पेंडिंग इशू रख देंगे, तो उस कर्म की कहानी पूरी करने के लिए मुझे बार बार, जब तक वो कहानी कंप्लीट नहीं होगी तब तक मुझे जन्म लेना पड़ेगा। और इसीलिए यहां विशेष रूप से क्या बताया है, जो अपने भारत की परंपरा में भी है, और वो है शब्दों की जो समृद्धि है, समृद्धि को बहुत अच्छा यूज करो। इसलिए एक रिवाज है, नारी के हर रूप का सम्मान करते हैं। बाबा ने भी देखो क्यों, कौन सी शक्ति को उठाया है, नारी को उठाया, बहनों को ऊंचा किया। तो बहू, बेटी, बुआ, ननंद, जिनके अंदर समझने की शक्ति है, वो चाहे लौकिक हो या अलौकिक, लेकिन कौन सी शक्ति, हाजिर जवाबें, मिलनसार नेचर कैसा चाहिए, ब्राह्मण है, मिलनसार नेचर, फिर उसके साथ रमणीकता भी चाहिए, मधुरता भी चाहिए, मधुरता भी चाहिए। इसलिए बाबा 30 दिनों से मधुरता मधुरता बोल रहे हैं, है ना। फिर दूसरा बाबा कहते हैं समझने की शक्ति और दूसरों को भी समझने की और समझाने की शक्ति। ये जिसके अंदर ये बहुत अच्छी होती है ना, कि ये रूठे हुए क्यों हैं, हम कम क्यों पढ़ रहे हैं, पुरुषार्थ में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, रिश्ते मेरे अच्छे क्यों नहीं है, क्या कारण है। हम एक शब्द बोल कर जाते हैं और सामने वाले को उन शब्दों को भुलाने में सालों साल लग जाते हैं। इस बात को समझो, हम एक वाक्य बोलकर जाते हैं और सामने वाले को सालों साल लग जाते हैं। जब तक आप उसे सॉरी नहीं कहते हो, क्षमा नहीं मांगते हो सच्चे दिल से, तब तक वो अपने दिल से, दिमाग से वो हटाता ही नहीं है। और इसलिए खामोश रहिए, क्योंकि ये जुबान काफी गुनाह करती है, काफी गुनाह करती है। हमारे ज्यादा से ज्यादा विकर्म इन शब्दों के कारण हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा विकर्म। ध्यान में रखना 90% जो झगड़े होते हैं ना, वो किस कारण से होते हैं, वो झगड़े शब्दों के कारण। 10% झगड़े सिर्फ इस बात के कारण, लेकिन 90% जो झगड़े हैं वो हमारा टोन, किस टोन से बोला आपने और आपने कैसे बोला, बस इसी कारण झगड़े होते हैं। और इसलिए शब्द संभाले बोलिए, शब्द के न हाथ न पैर, एक करे घाव दूसरा भरे घाव। शब्द संभाले बोलिए, और जिसके पास ये बुद्धि नहीं है, समझने की बुद्धि नहीं है ये, तो उसका क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, जिसका ये बुद्ध बहुत कमजोर है, ये बुद्धि नहीं है, ये ज्ञान की बुद्धि नहीं है, उसकी जबान हमेशा लड़खड़ाएगी, कुछ न कुछ इनके दिमाग में, न खुद को समझ रहे हैं न दूसरों को समझ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स करते रहेंगे। और ऐसी आत्मा के जीवन में हमेशा पैसे की तंगी होगी। और इसलिए देखो ऐसे भी कहते हैं बिजनेस में, जिसकी जवान बड़ी मीठी है ना, वो मिट्टी से सोना भी बिक सकता है और जिसकी जवान अच्छी नहीं है वो सोने को भी वैल्यू नहीं दे सकता है। मतलब इतना महत्व इन शब्दों का है। इसलिए तो बाबा रोज जो मुरली चलाते वो किस लिए चलाते हैं, हम बच्चों की भाषा बदले, मन की भाषा बदले, हमारे शब्दों की भाषा बदले, ताकि हम अपने कर्मों की भाषा बदल दे। जिसने कर्मों की भाषा समझ ली, जिसने कर्मों की भाषा समझकर उसको सुलझाना शुरू कर दिया, उसके सारे बंद रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। कर्मों की भाषा समझिए, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। एक रिश्ता, एक बहन दूसरे के साथ बहुत अच्छा सब बहुत अच्छा बिहेव करती है, वही सेम दूसरे के साथ उनका अच्छा इतना अच्छा नहीं है, डिस्टेंस है, क्यों, इसका कारण क्या दोगे, बोलो। पहला वाक्य बोलो, मेरे कर्मों के लिए मैं खुद जिम्मेवार हूं, बोलिए। वापिस बोलिए, तो आज से मुझे किसी को भी दोष, ठीक है ना, एक बात ध्यान में रखना, वापिस एक बात, जितना दूसरों को दोष देंगे, जितना किसी की निंदा करेंगे, उतना मेरे शुभ कर्म भस्म होंगे, सामने वाले के अशुभ कर्म नष्ट होंगे। जितना किसी की निंदा करेंगे, किसी को दोष देंगे, बैठे बैठे आए बट्टी में बट्टी हो गई, दोपहर में 1-4 शुरू हो गया क्या होगा? आए थे खुद के विकर्म विनाश करने, किसके कर रहे हैं? दूसरों के। और इसलिए जबान पर बहुत बहुत ध्यान देना है। और इसलिए कर्म नेकी से कीजिए, न दुआ खाली जाती है न बद्दुआ, नेकी से कीजिए। और इसलिए अपने शब्दों को, अपनी भाषा को बहुत समृद्ध बनाइए, बहुत समृद्ध बनाइए। मुझे किसी का अपमान नहीं करना है, पहली बात, कोई कैसा भी हो मुझे उसका अपमान नहीं करना है। थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक होगा। कल भी हमने सुना दादी जी का उदाहरण, वेट एंड सी। लेकिन बोलकर विकर्म नहीं पैदा करना। और हाँ, हमारे शब्दों में क्या होना चाहिए? सम्मान, सम्मान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, दुआ दीजिए। संगम युग के बहुत थोड़े सा समय बचा हुआ है, बहुत थोड़ा सा समय बचा है। और इसलिए कर्म से दुआ दीजिए, शब्दों से आशीर्वाद दीजिए और संकल्प से भी दुआ दीजिए। अपना रिकॉर्ड बनाना है मुझे बस। और इसलिए मेरे शब्दों में क्या होना चाहिए? सम्मान। अच्छा, वो कर्म, वो जो शब्द होंगे ना, उसमें समृद्धि होनी चाहिए। समृद्धि समझते हैं? समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। हम किसी से बात भी करते ना तो क्या करते हैं? बस ऐसे ही, हाँ कैसे है, ठीक है, कब आए, कब जा रहे, फिनिश। नहीं, अरे बाबा ने इतनी इतनी सुंदर स्वमान मुरली के अंदर दिए, इतने सुंदर टाइटल दिए। आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो बात करने के बाद वो व्यक्ति आपसे क्या होना चाहिए? उमंग उत्साह, उसका मन उमंग उत्साह में भर जाना चाहिए। आप दूसरे के मन की स्थिति को ऊंचा उठा सकते हो। हमारे यहाँ एक भाई आते हैं सेंटर पे, ऑकेजनली आते हैं, कॉन्टेक्ट सोल है। उस आत्मा की एक विशेषता है, वो जब भी किससे मिलते तो उनका बात करने का तरीका देखो कैसे है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपको देखा मेरा आज का पूरा दिन अच्छा गया। कोई बुजुर्ग होंगे कहेंगे, अरे आप तो हमारी माँ के जैसे हो, बस आपका आशीर्वाद इस बेटे के मस्तक पर सदा रहे, माँ सब अच्छा होगा। अभी वो उस आत्मा को पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन वो उनको इतना सम्मान दे रहे, इतना सम्मान दे रहे हैं। शब्दों की समृद्धि, समृद्धि, समृद्धि। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, देखो क्या होता है। इसलिए कर्म की भाषा समझिए और शब्दों की भाषा को समृद्ध बनाइए। सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और ये शब्दों की भाषा हमें अच्छी बनाने के लिए क्या करना है? जाने अनजाने में हमारे मुख से किसी के प्रति, किसी आत्मा के प्रति, बहन के प्रति, या फिर लौकिक में भी ननंद या जो भी होगा, बुआ, ननंद, बेटी, बहू, किसी के भी प्रति, किसी नारी शक्ति के प्रति हमारे मुख से, या किसी भी भाई के प्रति मुख से अगर निकल गया है ना, तो प्लीज इस कर्मों का हिसाब क्लियर कीजिए। मन ही मन रोज आप उनसे क्षमा मांगिए। अगर आप पर्सनली जाकर मिल सकते हो तो बेस्ट। पर्सनली जाने की हिम्मत नहीं है, वो आपसे बात ही नहीं कर रहे, छोड़ दीजिए। मन ही मन कह दीजिए, हे आत्मा, आपका हमारा हिसाब किताब पूरा हुआ, मैं आपसे क्षमा मांगती हूं, मैं आपसे क्षमा मांगती हूं, मैं आपके लिए सदा शुभ सोचती हूं। हम बहुत अच्छे मित्र हैं, आपका सब अच्छा हो। डेली शुरू कीजिए, डेली शुरू कीजिए, क्योंकि इन सारे रिश्तों को हमें संगम युग पर ठीक करना है। और इसीलिए हम क्या करें, बहुत अच्छे प्रैक्टिस करें, और वो प्रैक्टिस स्वमान सिर्फ हम अपने लिए नहीं ले, हम औरों को भी स्वमान दें और देखें वातावरण कैसे बन जाता है, किस प्रकार का। और इसीलिए आइए एक बहुत अच्छा आज से एक नियम बनाएंगे। इस मुख से किसी का भी अपमान, बोलो एक बार चुप बैठेंगे, सहन करेंगे, आंखों से आंसू आया तो भी चलेगा, लेकिन किसी का भी अपमान नहीं करेंगे। लेकिन अपमान के बजाय उस आत्मा को क्या देंगे? सम्मान देंगे। आइए एक सुंदर एक्टिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, और इस एक्टिविटी के लिए हमें भाइयों को जैसे कहा है उस प्रकार से भाई लोग फटाफट खड़े हो जाएंगे। कैसे लगा बहनों को? जिनको स्वमान मिले उनको कैसे लगा, और जिन्होंने स्वमान दिए उनको कैसे लगा? तो यहां तो दोनों फायदे में हैं, देने वाले भी लेने वाले भी। बस इतने सुंदर सुंदर टाइटल और स्वमान बाबा हम बच्चों को देते हैं। इतने सुंदर सुंदर स्वमान और टाइटल भगवान हमें देते हैं, तो बस हमें एक सुंदर एक संस्कार बनाना है, अपने मुख की भाषा को फट से, जो किसी के लिए लेबल देते हैं ना, फट से किसी को हम लेबल देते हैं ना, आज से ये लेबल की भाषा बंद, लेबल की भाषा बंद, भाषा की समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। जयपुर राजस्थान, राजस्थान में तो आओ सा, हुकुम सा, पधारो सा, सा सा, हाँ जिमो सा, हाँ देखो राजस्थान में कितनी जबरदस्त ये करते, सम्मान देते हैं, जवाई सा, आओ सा, है ना। तो कितनी ये राजस्थान की ये क्या है, संस्कृति है सम्मान की। और बाबा हम बच्चों से भी ये चाहते हैं कि हम बच्चे भी अपनी भाषा को समृद्ध बनाएं। चलिए इसी के साथ साथ एक आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे 9 ग्रह है, आज हम सिर्फ 4 कंप्लीट कर रहे हैं, और उसमें से एक मुख्य है गुरु ग्रह, जिसको बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं बृहस्पति की दशा, गुरु की दशा। ध्यान में रखना गुरु ग्रह नव ग्रहों में प्रमुख है, जिसको देव गुरु कहा जाता है। इस गुरु का रिश्ता कौन से रिश्तों के साथ होंगे, इस ग्रह का रिश्ता किस रिश्ते के साथ होगा बताइए। हमने देखो सूर्य का रिश्ता किसके साथ देखा, पिता के साथ। माँ का रिश्ता, बुध का रिश्ता, बहन बुआ बेटी इनके साथ। अभी गुरु का रिश्ता किसके साथ होगा, गुरु का रिश्ता एक सदगुरु शिव बाबा, दूसरे हमारे सेंटर के दीदी, निमित्त दीदी साकार में। अभी ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता कैसे है आप सोचो, जिसके शरीर में ये रिश्ता ऐसा है जैसे बॉडी में इम्यून सिस्टम का महत्वपूर्ण काम है, रोग प्रतिकारक शक्ति, जिसकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छी है ना, वो आप देखो कुछ भी हजम कर सकता है, खा सकता है, कहां भी वो ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसे गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान है, और वो आत्मा की जैसे इम्यून सिस्टम, जिसके सर के ऊपर बड़ों की आशीर्वाद है, जिसके सिर के ऊपर उस सदगुरु का हाथ है, उनको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता मिलती है। और जिसका ये गुरु अच्छा है ना, वो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, उसके पास ज्ञान बुद्धि शिक्षा संतान का सुख यश भाग्य, और हाँ ये गुरु भी आपको क्या करता है, धन की समृद्धि, धन का कारक है ये, इतना ही नहीं सुख समृद्धि स्वास्थ्य, गुरु अच्छा होगा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। और इनकी मनोवृत्ति बड़ी पॉजिटिव रहती है, ये हमेशा शुभ सोचते हैं, और इतना ही नहीं इनकी वाक शक्ति बड़ी जबरदस्त रहती है, इनको वाचा सिद्धि रहती है, इनकी वाणी का प्रभाव चारों ओर फैलता है। ये है गुरु की विशेष कमाल। अगर गुरु प्रबल नहीं है जिसका, उसका जीना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जिसके पास अपने गुरु की आशीर्वाद नहीं है, दुआ नहीं है, तो उस आत्मा का जीना मुश्किल होता है। आप में कितनी भी विशेषता हो, गुरु का आशीर्वाद नहीं है, गुरु का साथ नहीं है। इसलिए देखो ये भी कहते हैं, तेरे साथ तेरा गुरु खड़ा है, तू फिकर में क्यों पड़ा है। तेरे साथ तेरा गुरु खड़ा है, तू फिकर में क्यों पड़ा है। माना इतना जबरदस्त गुरु का आशीर्वाद कहा काम करता है, जो एक ढाल की तरह काम करता है, कोई भी विघ्न आए उस विघ्न से गुरु बचाता है। ध्यान में रखना बुद्ध अगर वाक शक्ति है तो गुरु हमें विघ्न से बचाता है, हमारे साइड से हजार भुजाओं वाला बाबा खड़ा हो जाता है। अभी ये गुरु माना क्या है, जैसे कहते सूर्य ग्रहों में राजा है तो गुरु मंत्री है। और ये गुरु क्या करता है बहुत अच्छी तरह से, इसलिए कहते गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, हमेशा गुरु को प्रसन्न करो। तो गुरु को प्रसन्न करते हैं माना क्या, बहुत अच्छी तरह से एक सदगुरु शिव बाबा के श्रीमत पर चलो, दूसरे जो अपने निमित्त आत्माएं हैं जो हमारे लिए निमित्त है, जो वो श्रीमत देते हैं जस्ट फॉलो, उनका सम्मान रखो। तो ये जो गुरु है ये क्या करता है, जिसका गुरु प्रबल है उसको भरपूर सम्मान मिलता है, उसकी विवेक शक्ति बहुत अच्छी होती है, उसकी आध्यात्मिकता बहुत अच्छी रहती है। और जिसका ये कमजोर है ना, उसको क्या होता है, लीवर का प्रॉब्लम, मोटापा होता है, पेट की समस्या, एसिडिटी, गैस की समस्या, नींद का इशू। आजकल कई लोगों में नींद का इशू है, उनको रात रात भर 2-3 बजे तक नींद नहीं आती है, अमृत वेले अच्छी नींद आती है। नींद का इशू देखो, हाँ कल तो हमने सुना है कि रात के इस लेक्चर में सुना है 10 बातें कौन सी करनी है, वो है 10 बातें, वो हमें जरूर करनी है। फिर इसके साथ ये भी चेक करना है कि गुरु को प्रसन्न करने के लिए हम क्या करें, उसको राजी कैसे रखें। और अगर जिनका ये ठीक नहीं ना, उनको ENT प्रॉब्लम होगी और उसके साथ साथ हार्ट की प्रॉब्लम होगी, और जिनका गुरु प्रबल नहीं वो आत्मा आलसी भी होगी, वो ब्राह्मण जीवन में भी वो जैसे एक नेमीनाथ की तरह चलेंगे, मुरली रेगुलर सुनेंगे, बस मुरली बैठे, मुरली क्लास में योग में बैठे, लेकिन वो जो अंदर से चाहिए लगन से चाहिए, जैसे बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख का आनंद, वो महसूस नहीं करेंगे, वो यही कहेंगे ठीक है ना, जो ड्रामा में होगा होगा, आप क्यों एक्स्ट्रा सोच रहे हो, आप क्यों एक्स्ट्रा कर रहे हो, ऐसी वो आत्मा आलसी होगी। ठीक है, अभी इस गुरु के प्रति आप सोचो, जो ऐसे गुरु है हमारे बाबा ने इस जीवन में, वापस ध्यान में रखो, इस ड्रामा में हमें जो भी आत्माएं मिलती है, जितनी भी मिलती है, पिछले जन्मों में हम कुछ करके आए हैं उनके साथ, इसलिए इस जन्म में वो आत्मा अपना चोला बदलकर, रूप बदलकर हमारे साथ आई है, हमारे सामने आई है, या वो आने वाले हैं। अभी जो एक एक रिश्ता है हमारा, वो सारा इससे कनेक्टेड, ये सारे डॉट्स है, इन डॉट्स को आप समझने की कोशिश करो। एक एक रिश्ता अधूरी कर्मों की कहानी पूरी करने के लिए आया है। तो कई बार कई कहते हैं, अरे मेरे साथ बहुत कर्मों का हिसाब किताब, ब्राह्मण जन्म में हुआ, बहुत मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा नुकसान हुआ, मेरे साथ ये हुआ। आपके साथ जो कुछ हुआ वो उस आत्मा ने नहीं किया है। वो किस कारण हुआ है बोलो, मेरे पिछले कर्मों का हिसाब किताब पूरा हुआ है, उल्टा उस आत्मा ने मुझे धर्म राज की सजाओं से बचा दिया। राइट या रॉन्ग, ताली बजनी चाहिए। अपनी सोच को बदलो, उस आत्मा को अपना टीचर समझो, गुरु समझो। इस आत्मा ने, अगर ये आत्मा ऐसे नहीं चलती तो मेरी तो धर्मराज की सजा तो फिक्स ही थी, लेकिन इस आत्मा ने जिस प्रकार से मेरे साथ व्यवहार किया तो मेरी धर्मराज की सजा क्या हो गई, खत्म ही हो गई, चुप तो ही हो गई है। अभी हम इस गुरु के प्रति कैसे चलते देखो, कैसे चलते। कई लोग अपने गुरु की निंदा करते हैं, कभी कोई देखो ज्ञान छोड़कर जाते शिव बाबा की निंदा करते, कोई ज्ञान में रहकर बाबा की निंदा करते हैं, और कोई कोई हम देखते हैं किसकी निंदा करते हैं, अपने टीचर्स बहनों के, है ना। और कैसे करते हैं, कई बार आप देखते हैं बहन जी ने हमको ये सेवा क्यों दी, नहीं बहन जी हमेशा मुझे ही सेवा देते हैं, ये धन की सेवा मुझे मिली, मुझे ही कर्मणा सेवा मिलती है, क्या मैं ही हमेशा दिखाई देती हूँ क्या, क्या हमको फैमिली नहीं है क्या, क्या हमको प्रॉब्लम नहीं है क्या, इनको कुछ समझता नहीं क्या, हमें कितना सारा देखना पड़ता है, फैमिली को भी देखना पड़ता है, इसको भी देखना पड़ता है, तो कई बार उनके अंदर कुछ होगा ना, तो उसके बारे में क्या करते हैं, निंदा करते हैं। कोई सेवा भी करते रहते हैं, ना नहीं कहते सेवा को, लेकिन उस सेवा के लिए बहुत ज्यादा संकल्प चलाते हैं, बहुत ज्यादा वर्णन करते हैं, आपने कितना दिया, मैंने इतना दिया, अच्छा इतना क्यों, इतने की जरूरत है क्या, ये करना है क्या, वो करना है क्या, ये सारा क्या चलता है अंदर में, संकल्प संकल्प संकल्प। ध्यान में रखना, हम चाहे हमें जो भी सेवा मिल रही वो कहां से मिल रही है, निमित्त मात्र, निमित्त मात्र जो दीदी होगी उससे मिलेगी, लेकिन वो सेवा उनके मुख से बुलवाने वाला कौन है, बाबा है। बाबा को हर सेवा से हमारा भाग्य खोलना है, बाबा को हर सेवा से हमारा ब्लॉक रास्ता खोलना है। बाबा उसी आत्मा को सेवा देते हैं जिसके विक्रम विनाश करवाने हैं। इस दुनिया में ब्राह्मण जीवन में भी अनेक आत्मा ऐसे बैठी है जो सेवा के लिए तरसती है, कहती थोड़ी भी सेवा दे दो ना, थोड़ी भी सेवा दे दो ना, हमें बहुत खुशी मिलेगी, हमारे भाग खुल जाएंगे। तो फिर सोचो, जैसे मेरी ब्राह्मण जीवन की यात्रा शुरू हुई, तो क्या मेरे मन में और मेरे मुख से मेरे गुरु के प्रति, जो भी निमित्त टीचर्स बहने हैं उनके प्रति कभी मैंने निंदा की? ऑनेस्टी से देखना, ऑनेस्टी से, हर एक आत्मा से कभी ना कभी होता है, नहीं होता ऐसे मत बोलिए, कभी ना कभी हुआ है, हाँ जी या ना जी, सच बोलना। बाबा के दरबार में बैठे हैं, सदगुरु के दरबार में बैठे हैं, होता है ना, कभी कभी हम दूसरों के प्रभाव में भी आ जाते हैं, है ना, कभी कभी कंपैरिजन शुरू हो जाती है, हम दूसरों के प्रभाव में आते हैं, और मालूम है क्या होता है, जब हम निंदा करना शुरू करते हैं ना, तो हम उस टीचर की नहीं करते हैं, उस दीदी की नहीं करते हैं, हम उसकी करते हैं। सदगुरु का निंदक ठहर न पाए, सदगुरु का निंदक ठहर न पाए। और इसलिए एक बहुत अच्छा, आज तक मैंने जो किया, जाने अनजाने में मैंने जो किया सो किया, ठीक है, जाने अनजाने में मैंने जो किया सो किया, अभी मैंने क्या करना है उसका, अभी क्या करना है। अगर मेरे किसी व्यवहार के कारण मेरे बाबा की भी निंदा हुई है, कई बार निंदा होती है ना, ब्रह्मा कुमारी में जाते और देखो क्या करते हैं, ऐसी भी निंदा हो गई है, तो फिर मुझे आज क्या करना है, हम भट्टी में आए हैं, है ना, हम भट्टी में आए हैं, तो आज क्या करना, एक बाबा को एक पत्र लिख देना, है ना, कुटिया में डाल देना, बाबा ब्राह्मण जीवन की यात्रा में अगर मेरे हाथ से आप, मेरे व्यवहार के कारण, मेरे कर्म के कारण, हाँ, अगर आपकी किसी भी प्रकार से निंदा हुई है, तो हे मेरे क्षमा के सागर, रहम के सागर, दया के सागर, प्रेम के सागर, मैं आपकी लाडली संतान आपसे दिल से बाबा माफी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। आज ये पत्र कुटिया में आप जरूर लिख देना बाबा के लिए, ठीक है ना, तो लिखेंगे। हमेशा हम पत्र अपनी समस्याओं के लिए लिखते हैं, लेकिन आज हम ये जो पत्र लिखने जा रहे हैं, ये पत्र हम किसके लिए लिखेंगे, बाबा के लिए। तो आज टाइम निकालकर आपको जो जो लिखना है आप सब याद करना, जो टाइम मिलता है ना आपको, दोपहर में 1 से 4, शाम को रात को भी टाइम मिलता है, आप जितना जितना आपको याद आता है, एक एक कर्म का सॉर्ट आउट करना इस जन्म का, जब से ब्राह्मण जीवन की यात्रा शुरू हुई है तब से लेकर, आपके पास 2 दिन है, आज का और कल का, बाबा को ये पत्र जरूर लिखना। रेडी, लिखेंगे, कौन कौन लिखेंगे? दूसरा और एक पत्र लिखना है, एक पत्र लिख सकते हैं, और एक पत्र जिसके बारे में, जिसके बारे में मेरे हाथ से ये हो गई है, किसी न किसी रूप से कभी निंदा ग्लानी हुई है, इस मुख से हम किसी के बहकावे में आ गए, या मेरा अपना छोटा सा मन वो सोचना शुरू हो गया, और मैंने वो की है, लगता है ऐसे हुआ है, लगता है, हाथ खड़ा करो, ये हुआ है। आज बाबा के दरबार में वो भी कर्मों का हिसाब हम क्या करते हैं, खाली करते हैं। टीचर्स बने, आपको लगता है ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है, लगता है हाथ खड़ा करो, बहन भाई हाथ खड़ा कर रहे हैं, आप भी हाथ खड़ा कर सकते हैं, हाँ हाथ खड़ा करो कि अगर मेरे हाथ से इस जीवन में हमारे निमित्त टीचर के प्रति अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम उसके लिए भी क्या करते हैं, क्षमा मांगते हैं। तो मांगनी चाहिए, मांगनी चाहिए, यस यस, तो मांगेंगे, अभी मांगेंगे, ठीक है। अच्छा, तो फिर सभी एक बार खड़े होंगे, दीदी आप ऊपर आएंगे, दीदी आइए ना, आप ऊपर आइए ना, दीदी आइए, सभी भाई बहने खड़ा हो, मुझे माइक दे देना। लाइन में खड़े रहना, लाइन में, दीदी आप बीच में बैठोगे, हाँ जी बैठिए, दीदी आप बैठना, हाँ बैठिए आप पहले, यस, बहने सारी लाइन में आ जाए, हाँ एक लाइन, एक के, यस, म्यूजिक बजा सकते हैं थोड़ा, भाई लोग भी खुले खुले लाइन बना सकते हैं, हाँ नहीं, दो लाइन भी बनाई है, आइए दो लाइन बनाई है, बीच का खाली हटा दीजिए, बीच में जो रखा है ना पर्स आदि वो हटा दीजिए, हाँ जी भाई म्यूजिक बजाओ, यस, पर्स बीच में नहीं रहे, ओके, आज ये मौका है, इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना, आज सारा हिसाब किताब चुक तो करना है, ओके, और इसलिए हाथ जोड़कर खड़े रहना है, और दीदी के सामने से प्लीज आप हमें माफ कीजिए, नहीं दीदी ऐसे कर कर आपको वहां जाना है, यस, नहीं नहीं नहीं, अगर कुछ हुआ है, अच्छे भाई बहन है, गलती से कुछ हुआ है तो यस, शुरू कीजिए, आगे आगे चलो, जल्दी जल्दी लाइन में बोलकर बोलकर बोलकर, हाँ बोलना है, बोलने को बहुत महत्व है, हम सिर्फ टीचर्स बहनों का लेंगे, हाँ आप सिर्फ वहीं से, आप सभी आगे आकर वहीं से कर लेना, ठीक है, हाँ सारी माताएं, एक माता इकट्ठी होती है तब तक भाई लोग सामने आकर सभी एक साथ करेंगे, आ जाओ टीचर्स बहनों का कंप्लीट होने दो, उसके बाद सारे भाई एक साथ खड़े होकर करेंगे, भाई लोग एक साथ आएंगे और आज आपको अपने गुरु के साथ का हिसाब किताब, थोड़ा उस साइड में जाइए भाई, लेफ्ट साइड में, और हाथ जोड़कर बोलिए, जोर से बोलिए, अभी शिव बाबा सतगुरु और आदरणीय दीदी गुरु दोनों आपको सच्चे दिल से माफ कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं। अभी माताएं आओ, माताएं, सारी माताएं इकट्ठी होकर आ जाओ, सारी चलो, और अभी हम ऐसे सदगुरु बाबा का और दीदी का, आदरणीय दीदी का हम विशेष शुक्राना करेंगे, है ना। तो जो सीनियर है और दो सीनियर दीदी, और किसको ऊपर बुलाए स्टेज पर, और दो जन, और दो सीनियर और एक जन, सभी बैठ जाओ, आ जाओ। अच्छा अभी देखिए क्या करना है, हमने क्षमा तो मांगी, शुक्राना करना है, रोज रोज शुक्राना करना है, बाबा का सदगुरु का शुक्राना, इतनी प्यारी प्यारी जो हमें दीदी मिले हैं उनका शुक्राना। तो शुक्राना जितना दिल से आप कर सकते हो खुशी खुशी से। अच्छा आप सबके हाथ में पुष्प है, इतना प्यार से मंदिर में उस पत्थर की मूर्तियों पर करते हैं, ये तो चेतन मूर्तियां हैं, हमें इनके ऊपर एक बरसाना है बहुत प्रेम से। और तालियां बजती रहे, झूमते रहो, भगत के साथ झूमते हैं, हम भगत नहीं है, हम तो सदगुरु के कौन है बच्चे हैं। तो इतना प्यार से भाई लगाइए गीत अभी जोर से, हाँ उनके इस पर, हाँ चरणों में ऐसे गिटारो चलेगा बड़ी भावना से।
घड़ी घड़ी आपका, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का।
गीत गाते रहिए, झूमते रहिए,
आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का,
हमारे भाई आ जाओ,
आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का,
कानन भाई, कानन भाई आ जाओ, आओ भाई को पकड़ के आ जाओ, इनको ये तो पूरा, आओ कानन भाई, संपूर्ण भाई यहाँ,
दुनिया की प्रीत को दिल से भुला के खुश हूँ मैं, दिल सतगुरु से लगा के लिख दिया दिल पर नाम मैंने आपका, लिख दिया दिल पर नाम मैंने आपका, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का,
शांति। सब बैठिए बैठिए, ये फूल इकट्ठे भी कर लेना भाई, बिखेर दिए। अच्छा चलो, मैं क्या नाम है आपका? सरिता बहन, आपने जो कराया हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम आपको बताना चाहते थे, अपने जयपुर में होता है ऐसा कभी या नहीं? कब होता है? नवरात्रे जो आते हैं स्पेशली ये जो दशहरे से पहले, तो 9 दिन और कोई कोई ज्यादा, जैसे मैं तो आगे एक बार 1 महीने का भी मौन रखा था, लेकिन 10-15 दिन तो रखती हूँ। उन दिनों में हम बिल्कुल टोटल मौन में रहते हैं कई बहनें, और लास्ट दिन वो जब नवरात्रे का भोग होता है अष्टमी नवमी, आप कभी हमारे पास आना अष्टमी नवमी पे, उस समय आप देखना, क्योंकि मौन में रहे हुए होते हैं ना 8-9 दिन हम लोग भी, और खाना वाना सब सूक्ष्म, अन्न नहीं खाना, और उस समय जो वातावरण बनता है, सबको आया याद? मैं तो जैसे ही मैंने कहा लो आज तो बहन ने नवरात्रों से पहले ही ये करवा दिया हम सबसे, बहुत अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा ना। तो इसलिए हम आपको विशेष, चाहे आप अपने साथ औरों को भी ले आना, अब नवरात्रे आएंगे जब दशहरे से पहले तो जरूर आना, तो आपको और भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।
आदरणीय दीदी जी से ये भासना आ रही थी, सचमुच जगदम्बा की तरह स्नेह की मूर्त बनकर सबको आशीर्वाद से वो भरपूर कर रहे थे। और आज बस यही बात थी जो बतानी थी, 4 कंप्लीट किए, 5 बाकी है। लेकिन अगर आज से इस भट्टी की सफलता हम ये कहेंगे 40 दिन तक, हमने डेट भी फिक्स की है 10 जून तक, एटलीस्ट 10 जून का है ना, तो हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी को दोष, तो एक ऐसा संस्कार बन जाएगा हमारा, बहुत सुंदर संस्कार बन जाएगा। दूसरा, हम अपनी भाषा को समृद्ध बनाएंगे, क्योंकि विश्व महाराजा और विश्व महारानी बनने वाले हैं, तो इसलिए हमें अपनी भाषा को भी इतनी ही समृद्ध बनाना है, और साथ साथ यही ध्यान रखना है हर एक आत्मा के साथ मेरा कर्मों का हिसाब किताब, हंसते हंसते मुझे चुप तो करना है, प्यारे बाबा को याद करना है, और अभी बचे हुए संगम युग के समय पर श्रेष्ठ भाग्य बनाना है। तो आप सभी भाई बहने इसमें शामिल हुए, इन सारी एक्टिविटीज में, इस प्रोग्राम में, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आदरणीय सुषमा दीदी जी ने, मैं खुद दीदी जी के क्लासेस सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दीदी जी क्लास जो कराते हैं, क्या शक्ति है उनके क्लासेस में, और क्या धारणा युक्त क्लासेस कराते हैं। आदरणीय दीदी जी खास विशेष यहाँ आए, और आपने हमारी विनती का मान रखा, इसलिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। और साथ में हमारे ये जो दो भाई जी हैं विशेष रूप से,